नमस्कार भारत, 22 मार्च शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।
भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे।
उम्मीदवारों की सूची से लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नदारद, क्या है इसका मतलब?
जो हीट एंड डस्ट होता है इलेक्शन का, उसके लिए आडवाणी जी की जो उम्र थी वो ज्यादा है, को नेचुरल ट्रांजिशन के रूप में ही देखना चाहिए।
और जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी ताल क्यों ठोकना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद।
तानाशाही राजा और सोई हुई प्रजा दोनों ही देश के लिए हानिकारक होती है, तो इसलिए मोदी जी को हराना वहाँ से बहुत जरूरी है।
लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेति से। भारतीय जनता पार्टी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए अपने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी फिलहाल गांधीनगर से सांसद हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए बताया कि 19 और 20 मार्च को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यवार उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के नेता ब्रेक्सिट की मौजूदा समय सीमा 29 मार्च से आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। ब्रिटेन के लिए ब्रेक्सिट की समय सीमा 22 मई तक बढ़ा दी गई है, बशर्ते ब्रितानी संसद यूरोपीय संघ के साथ विथड्रॉल डील को अपनी मंजूरी दे दे। अगर ब्रिटेन की संसद डील को मंजूरी देने में विफल रहती है तो उस स्थिति में ब्रेक्सिट की समय सीमा 12 अप्रैल होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका गोलन पहाड़ियों को इसराइल के इलाके के रूप में मान्यता दे। 1967 में सीरिया के साथ युद्ध के दौरान इसराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था, तभी से दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर विवाद चला आ रहा है। इसराइल ने 1981 में इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए गोलन पहाड़ियों में अपना प्रशासन और कानून लागू किया था, लेकिन दुनिया भर के देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। यरूशलम में इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप का फैसला इसराइल के उन युद्धों को मान्यता है जो उसने गोलन पहाड़ियों को लेकर अपने देश की रक्षा के लिए लड़े हैं। उन्होंने कहा,
Tonight President Trump made the decision to recognize that that hard-fought real estate, that important...
आज रात राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्से को मान्यता देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह मुखर फैसला इसराइल के लोगों के लिए अहम है और सचमुच ऐतिहासिक होगा। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के मोसुल शहर में टिग्रिस नदी में एक नाव डूबने से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और माना जा रहा है कि नाव में सवार लोगों की संख्या 200 के लगभग थी। ये सभी लोग घूमने के लिए एक टूरिस्ट आइलैंड पर जा रहे थे। 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों ने पर्यटकों को पहले ही नदी में बढ़े हुए जलस्तर को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, करीब 70 से 100 लोग मोसुल में डूब गए। जब ये हादसा हुआ तब मैं पास में ही था। जल संसाधन मंत्री ने पहले ही टिग्रिस नदी में जल स्तर बढ़ने की चेतावनी दे दी थी। दुर्भाग्यवश वे लोग पुरानी नाव पर सवार थे और नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। ये थे हादसे के एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति माइकल टेमर को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। 78 साल के टेमर 2016 से 2018 तक ब्राजील के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। टेमर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, हालांकि टेमर खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने कहा है कि उसने लाखों पासवर्ड से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे को सुलझा लिया है। कंपनी ने माना है कि ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट के रूप में सर्वर में रखे गए थे और फेसबुक के कर्मचारी ही इन्हें पढ़ सकते थे। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि ये पासवर्ड फेसबुक के बाहर किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं दिखाए गए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। काफी इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कल दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
और आज हम सारी डेलिब्रेशंस करने के बाद चुनाव समिति का जो उन्होंने तय किया उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के हम 182 कैंडिडेट्स आज अभी डिक्लेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वो चुनाव लड़ेंगे।
ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा। पहली सूची में भाजपा ने 184 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें सबसे अधिक 28 उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जबकि बाकी सीटों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब 1/3 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
गुरुवार को होली के दिन बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की और उसमें उत्तर प्रदेश के 28 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल थे। पार्टी ने जहां प्रधानमंत्री को उनकी पुरानी सीट वाराणसी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदा सीट लखनऊ से ही चुनाव लड़ाने पर मंजूरी दी, वहीं कानपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी के टिकट पर संशय बना हुआ है। हालांकि सीट पर अभी किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है। इस सूची में वैसे तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री और शाहजहांपुर से लोकसभा सदस्य कृष्णा राज का टिकट काटकर अरुण सागर को देना और आगरा से मौजूदा सांसद और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया की जगह राज्य सरकार में मंत्री SP बघेल को उम्मीदवार बनाना थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा था कि पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में कई सांसदों के नाम कटेंगे, लेकिन जितनी सीटों पर नाम घोषित हुए हैं वहां ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है। पार्टी ने संभल के सांसद सतपाल सैनी का भी टिकट काटा है और उनकी जगह परमेश्वर सैनी को उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार हरदोई से अंशुल वर्मा का टिकट काटकर जयप्रकाश रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। अंशुल वर्मा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए नरेश अग्रवाल पर पिछले दिनों कई गंभीर आरोप लगाए थे। मिश्रिक सुरक्षित से सांसद अंजू बाला की जगह बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए अशोक रावत को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से सांसद चौधरी बाबूलाल का भी टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह राजकुमार चहर को टिकट दिया गया है। जिन 6 मौजूदा सांसदों का पार्टी ने टिकट काटा है उनमें से 4 अन्य पिछड़ा वर्ग और 2 अनुसूचित जाति से हैं। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को भी दोबारा टिकट मिलना काफी चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। साक्षी महाराज ने 4 दिन पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि यदि उनका टिकट काटा गया तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। राज्य सरकार में मंत्री और रायबरेली से संबंध रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को पार्टी ने संभल से टिकट दिया है। साल 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य BSP छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने मोदी सरकार के अन्य मंत्रियों VK सिंह, महेश शर्मा और संतोष गंगवार को भी उनकी पुरानी सीटों से ही टिकट दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की सीट पीलीभीत से अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा का 25 सीटों पर लड़ना तय है। इनमें से 16 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। प्रमुख नामों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं हंसराज अहिर चंद्रपुर से और डॉक्टर सुभाष भामरे धुलिया से फिर चुनावी मैदान में होंगे। इनके अलावा और महाराष्ट्र की सीटों पर क्या खास है इस सूची में, आइए सुनते हैं संजय रमाकांत तिवारी की इस रिपोर्ट में।
कल आई भाजपा की पहली सूची में महाराष्ट्र के 16 सीटों के प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें केवल दो नए नाम हैं। राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे डॉक्टर सुजय को अहमदनगर से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर सुजय हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। यहाँ के वर्तमान सांसद दिलीप गांधी का टिकट काटा गया है। इस सूची में जातीय समीकरणों पर और पिछले परिणामों पर बारीक नजर रखते हुए संतुलन बनाने का प्रयास साफ नजर आता है। भाजपा के गढ़चिरौली जिले के कुछ विधायकों के विरोध के बावजूद वर्तमान सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा से जुड़े अशोक नेते को फिर टिकट मिला है। महाराष्ट्र तैलिक समाज संगठन के बड़े नेता रामदास तड़स को फिर वर्धा से टिकट दिया गया है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी डॉक्टर प्रीतम मुंडे को बीड तथा स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी पूनम को उत्तर मध्य मुंबई से फिर प्रत्याशी बनाया गया है। कुनबी समाज के संजय धोत्रे को अकोला से और सुश्री रक्षा खड़से को रावेर से फिर चुनाव में उतारा जाएगा। सुश्री रक्षा खड़से के ससुर एकनाथ खड़से को कुछ आरोपों के चलते महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और वे इन दिनों पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं। इस सूची में क्या प्रमुख समाज और उनके नेताओं को खुश रखने के लिए इन नामों को शामिल किया गया है? हमने ये सवाल पूछा राजनैतिक विश्लेषक और राज्य मागास्वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर जवाहर चरडे से।
बड़े नेताओं खुश की बात नहीं है, उन्होंने ये देखा कि जो जो जातिया है जो है ना इतने जो जो मतदार संघ में है और उनके उम्मीदवार यदि उनके पास आए तो उन्होंने उसको न्याय दिया है, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपनी पार्टी और बैलेंस समझ गए क्या, इसके लिए उन्होंने किया समझ गए क्या। केवल खुश करने से पार्टी जीत कर नहीं आती समझ गए क्या, उनका काम होना चाहिए। काम काम जिनका काम भी है ऐसे लोगों को टिकट दी और सोशल इंजीनियरिंग में उनके पास में जो है ना कैंडिडेट थे और उनको न्याय दिया समझ गए, उनको रिपीट किया, उनको रिप्लेस नहीं किया।
विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा की इस सूची से कांग्रेस के ऊपर इनसे मजबूत प्रत्याशी ढूंढने का दबाव कुछ बढ़ जाएगा। इधर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे, बारामती से सुप्रिया सुले और भंडारा गोंदिया से प्रफुल्ल पटेल जैसे संभाव्य प्रत्याशियों के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी कौन होंगे ये अभी साफ नहीं हो पाया है। कुछ और संभावित विवाद वाली सीटों पर भाजपा क्या फैसला लेती है ये भी अगली सूची में साफ हो पाएगा। मसलन मुंबई नॉर्थ ईस्ट में जहां किरीट सोमैया के नाम का शिवसेना विरोध कर रही है, लेकिन भाजपा के लिए दुविधा यह है कि उसके लिए सोमैया और शिवसेना दोनों जरूरी हैं। महाराष्ट्र से संजय रमाकांत तिवारी, BBC।
नमस्कार भारत। शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को गैर कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों से बहुत उम्मीदें हैं। इन राज्यों में सबसे खास राज्य का नाम है ओडिशा। इस राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं। भाजपा ने कल अपनी पहली सूची में यहां की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। इन नामों में राज्य के सत्ताधारी दल BJD के दो पूर्व सांसदों BJ पांडा और बालभद्र मांझी के नाम भी शामिल हैं। साथ ही भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 100 उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए हैं। सुनिए भुवनेश्वर से संदीप साहू की ये रिपोर्ट।
फूल झा, श्री अनंत नायक, श्री प्रताप सारंग।
बृहस्पतिवार की शाम नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 184 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए ये थे केंद्रीय मंत्री JP नड्डा। इनमें उड़ीसा के 10 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उड़ीसा के लिए जारी सूची में महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में भाजपा में आए वैजयंत पंडा को उनके पूर्व लोकसभा क्षेत्र केंद्रपड़ा से और बलभद्र मांझी को उनके वर्तमान के संसदीय क्षेत्र नवरंगपुर से उम्मीदवार चुना गया है। सूची में मांझी सहित 5 नए चेहरे हैं और 3 महिलाएँ। केंद्र मंत्री ज्वेल उरांव, जो 2014 में उड़ीसा से जीतने वाले भाजपा के एकमात्र उम्मीदवार थे, को एक बार फिर उनके पुराने संसदीय क्षेत्र सुंदरगढ़ से चुन लिया गया है। जिन 5 नेताओं को दोबारा चुना गया है उनमें से एक हैं बालेश्वर से प्रताप षडंगी। उनका मानना है कि इस बार राज्य में भाजपा काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं जीतने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ये चुनाव बीजेपी के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस एक तरह से अपने अस्तित्व गंवा देने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार काफ़ी अच्छा मौका है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करने के कुछ ही घंटे बाद भाजपा ने राज्य के 99 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी। इस सूची में कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर भाजपा में योगदान किया था। इनमें एक प्रमुख नाम है लंबे समय तक नवीन पटनायक सरकार में मंत्री रह चुके डॉक्टर दामोदर राउत, जिन्होंने बीजेपी से निकाले जाने के बाद पिछले 14 तारीख को ही भाजपा में योगदान किया था। इसी तरह सालेपुर के वर्तमान के कांग्रेस विधायक प्रकाश बेहरा, जिन्हें भाजपा में आते ही उनके पुराने चुनाव क्षेत्र सालेपुर से टिकट मिल गया। माना जा रहा है कि राज्य के बाकी 11 लोकसभा क्षेत्रों और 48 विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा कई ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो टिकट न मिलने के बाद बीजेपी छोड़कर भाजपा में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। संदीप साहू, BBC, भुवनेश्वर।
इस बार भाजपा उम्मीदवारों की सूची में पूर्व उप प्रधानमंत्री और पार्टी के आधार स्तंभ माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं है। 1998 से लाल कृष्ण आडवाणी लगातार गांधीनगर सीट से चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार इस सीट से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। क्या ये लाल कृष्ण आडवाणी युग का अंत समझा जाए? यही जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने बात की वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह से।
नहीं, ये नेचुरल ट्रांजिशन है जो कि एक जनरेशन जो कि अब उस स्थिति में नहीं है कि एक्टिव कैंपेन कर सके, ये जो हीट एंड डस्ट होता है इलेक्शन का, उसके लिए आडवाणी जी की जो उम्र थी वो ज्यादा है, तो हमें लगता है कि इसको नेचुरल ट्रांजिशन के रूप में ही देखना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
क्या जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी जी का कद था बीजेपी में, तो अब ये माना जाए कि अमित शाह उनकी सीट से लड़ रहे हैं तो वो उस कद के नेता हो गए हैं?
देखिए, किसी सीट पर लड़ने से कद ना बढ़ता है ना छोटा होता है, क्योंकि अगर ये यार्डस्टिक है तो वाराणसी से कोई भी ऐसा नेता आपको याद नहीं होगा जिसका कद ऐसा हो जो PM तक जाता हो, तो लेकिन वाराणसी से मोदी जी जब आए तो वो सीट की वजह से नहीं होता है, इंडिविजुअल लीडर होता है, वो सीट उसका बेसिस नहीं हो सकता। तो वैसे ही गांधीनगर से अमित शाह लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, पर इसकी वजह से उनका कंपैरिजन आडवाणी जी से करना वो शायद उचित नहीं होगा। उसकी वजह कई हैं, एक तो ये है कि एक जो पूरा युग है वो बदल गया है, लीडर का जो नेचर है लीडरशिप का वो बदल गया है, तो दोनों अलग अलग हैं और आडवाणी जी का जो स्टेचर है वो बहुत बड़ा है, अमित शाह को अभी वहां तक जाने में बहुत वक्त लगेगा।
आपने कहा युग बदल गया है, क्या इसे ये भी माना जाए कि अब आडवाणी युग का अंत हो गया है?
नहीं, लेकिन इसमें अब शक कहाँ रह गया था, ये तो 2009 का जब इलेक्शन था उसके बाद से साफ हो गया था कि ये युग और वो जो नेता थे उन लोग का टाइम हो गया है। तो अब तो मतलब 90 इयर्स के बाद किसी की एज हो और उस पे ये सोचना कि उसका युग रहेगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा।
लेकिन जिस तरीके से किसी भी नेता की, मान लीजिए क्रिकेटर ही अगर रिटायर होता है तो वो उसका अपना निर्णय होता है, किसी नेता की अगर विदाई को देखा जाए तो जिस तरीके से आडवाणी धीरे 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 फेड होते चले गए और अब स्थिति आ गई है कि कोई उनकी बात भी नहीं करता, तो क्या आपको लगता है कि ये एक इस विदाई को आप कैसे देखते हैं उनकी?
नहीं, मतलब कोई भी लाइफ जो होती है वो फेड होती है, तो उसमें आप ये नहीं देख सकते हैं कि वो इस समय उसको पूछा जा रहा है उस समय नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप याद करें तो CPM में सुरजीत साहब थे, तो वो बहुत ही एक्टिव रहते थे। लास्ट के फेज में वो भी ऐसे ही हट गए थे। जॉर्ज साहब को अगर आप लें तो उनके साथ भी यही होता है। तो ये लाइफ का जो एटर्नल नियम है उसको आप बदल तो सकते नहीं है ये सोच के कि नॉस्टैल्जिया में रहें और कहें कि साहब 30 साल पहले इनका जो स्टेचर था वो बहुत बड़ा था लिहाजा अब भी उसको रखा जाए। स्टेचर तो समय सापेक्ष होता है ना, तो वो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो 30 साल पहले स्टेचर था वो हमेशा रहेगा।
अच्छा सर, जिस तरीके से अमित शाह जी को अहमदाबाद से लड़ने के लिए कहा गया है, क्या आप ये इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अमित शाह सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं सरकार में भी नंबर दो होंगे?
देखिए मतलब इस पे स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता है। ये निर्णय पीएम का होता है कि वो अपने कैबिनेट में किसको लें। तो पत्रकार के रूप में हम स्पेकुलेशन में जाएं कि वो जब पार्लियामेंट का सीट जीत जाएंगे तो पीएम उनको रखेंगे, क्योंकि चॉइस भी पीएम की है, तो उसमें हम पत्रकार होके उनकी जगह लेके और ये नहीं बता सकते हैं कि वो उनको लेंगे नहीं लेंगे।
लाल कृष्ण आडवाणी का नाम बीजेपी की पहली सूची से गायब होने के क्या है मायने, अधिक जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
बढ़ते हैं आगे श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्रोताओं आपको याद होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय संगठन भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने मोदी को चुनौती देने की ठानी है। चंद्रशेखर आजाद से बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने यह खास बातचीत की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपने कहा था कि मैं बनारस जाके उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो अब क्या आप अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे?
बिल्कुल लड़ूंगा।
क्या आप किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे?
मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे लड़ूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हम मोदी जी को हराने में जो है कामयाब हो जाएंगे।
चंद्रशेखर जी, मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और आप एक उभरते हुए नेता हैं, आप क्यों लगता है कि आप नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला वहां पे कर पाएंगे? किन मुद्दों पे आप वहां चुनाव लड़ेंगे?
इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ जो अन्याय 4.5 साल में किया है वो भी लोगों से छिपा हुआ नहीं है, और जिस तरह से उसने सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निराशा मिली है, तो ये देश जो है इसमें 51% युवा है, तो युवा पहले भी जो है अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो छल कपट की राजनीति भाजपा कर रही है ये देश हित में नहीं, तो देश को बचाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो तानाशाही, राजा और सोई हुई प्रजा दोनों ही देश के लिए हानिकारक होती है, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए, तो इसलिए मोदी जी को हराना वहां से बहुत जरूरी है। तो मैंने अपनी पहली उसमें स्टेटमेंट में कहा था कि अगर वहां से कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं उतरता तो मैं मोदी जी के सामने उतर कर नहीं बताऊंगा कि हम कमजोर तबके के लोग जो हैं, जो इस देश में बहुजन समाज के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जिताना भी जानते हैं और हराना भी जानते हैं, और हम ही वोटर हैं, 85% लोग इस देश के वोटर हैं, तो जब 85% वोट एक तरफ जाएंगे तो मोदी जी को वहां जो है हार का मुंह देखना पड़ेगा।
आप तेजी से उभरे, आपने राजनीति अभी शुरू नहीं की है, कोई पार्टी अभी आपने ज्वाइन नहीं की है, अपना एक दल बनाया है जो एक युवाओं का दल है, ऐसे में पहला ही मुकाबला देश के ताकतवर प्रधानमंत्री से, क्या आप अपने पूरे आगे जो राजनीतिक करियर है उसे दांव पे नहीं लगा रहे हैं?
देखिए, मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं, मेरा उद्देश्य जुल्म, जाति और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को मजबूत करना है, बुलंद करना है, लोगों में ये बताना है कि हम कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य हो, जो भी गलत करेगा हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, और वो ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं है, उनके राज में इतने सैनिक जो है सीमा पर शहीद हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई ताकतवर नहीं होता है। अब उनके पास धन है, उनके पास बल है, उनके पास सरकार की ताकत है, उनके पास सरकारी मशीनरी है, और हमारे पास है हमारा कार्य जो जमीनी तौर पर हम करते हैं, उनको हम सस्ते संसाधनों, जो साहब काशीराम ने सिखाया है, उनसे हम उन्हें चुनाव में जो है मजबूत टक्कर देंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह जो है जीत हमारी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री को एहसास हो जाएगा कमजोर लोग जो हैं, वो जो दिखते कमजोर है कमजोर होते नहीं, जो बोलते बहुत ज्यादा है वो ज्यादा ताकतवर नहीं होते, इसका जवाब जो हम लोकसभा चुनाव में बैलेट से जो या ईवीएम से चुनावेंगे वो वहां देंगे।
चंद्रशेखर जी, कुछ दिन पहले आपसे प्रियंका गांधी जी ने मुलाकात की थी, उसके बाद ये चर्चा हुई कि शायद आप कांग्रेस के टिकट पर भी वहां से आ सकते हैं, क्या ये बात कुछ आगे बढ़ी है या जो चर्चा थी वो सिर्फ चर्चा क्या ही है?
देखिए, मानवता के नाते प्रियंका जी से मेरी मुलाकात हुई और वो भी, मैं बीमार था, वो हॉस्पिटल आई, तो मेरी राजनीतिक चर्चा उनसे कुछ नहीं हुई। हम सब लोगों का उद्देश्य जो इस देश में सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सब लोगों का प्रथम और अंतिम उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, भारत के संविधान की रक्षा करना है, देश के लोकतंत्र की रक्षा करना है। तो जिस तरह का माहौल अभी बहुजनों में बना हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हो या अपर कास्ट के वो लोग हैं जो संविधान में भरोसा रखते हैं, वो सब लोग पीड़ित हैं, वो सब लोग शोषित हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कोई कमजोर व्यक्ति वहां से चुनाव में खड़ा होकर और मोदी जी के सामने सरेंडर कर दे या चंद पैसों के लालच में बिक जाए। तो मैं पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ूंगा। रही बात जो लोग इसमें, जो लोग चाहते हैं कि मोदी जी हारे, जो लोग चाहते हैं कि भाजपा का, भाजपा मुक्त भारत हो, जो लोग चाहते हैं देश का संविधान जिंदा रहे, जो लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र देश में जिंदा रहे, युवाओं को, कमजोर की महिलाओं की आवाज उठे, तो वो उसमें मदद करेंगे। वो सब लोग जो है, मुझे उम्मीद है, वो मदद करेंगे।
स्वतंत्र उम्मीदवार जब लड़ता है तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, पहचान से मेरा मतलब है चुनाव चिन्ह का, और जब वो किसी पार्टी के टिकट पे लड़ता है तो उसके पास एक पहले से चर्चित पहचान होती है। अगर आपको किसी पार्टी ने, किसी ने टिकट दिया तो क्या आप वो स्वीकार करेंगे?
देखिए, मैंने प्रयास किया है कि जो लोग भाजपा के विरोध में, जैसे कि हमने हमारे प्रयास से एक मजबूत गठबंधन यूपी में हुआ, हम लोगों ने कहा बार बार कि भाजपा को हराने के लिए गठबंधन की, तो ऐसे में मैं किसी भी दल का, अगर सब लोग सामूहिक रूप से अपने दल का प्रत्याशी घोषित करते हैं, तो जो सामूहिक होगा, जो सर्वदलीय होगा, वो किसी एक दल का पैनल नहीं हो सकता। तो सब लोग मैं स्वतंत्र लड़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जो हैं, जो संविधान के समर्थन में, वो मुझे सपोर्ट करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2019 का आगाज 23 मार्च यानी कल से होगा। इस टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा, जहां एक तरफ एमएस धोनी होंगे और दूसरी तरफ कप्तान विराट कोहली। विराट और धोनी के बीच होने वाले पहले मुकाबले को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैसा रहेगा ये मुकाबला, आइए जानते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल से।
पहला मैच है, बहुत अच्छा मैच है। चेन्नई इज चैंपियन टीम और जो विराट की टीम है बैंगलोर, उनका प्रदर्शन बड़ा अप एंड डाउन रहा है। अब उन्होंने अपनी टीम को काफी चेंज किया है, बैलेंस किया है थोड़ा सा बैंगलोर ने, तो देखते हैं कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट है जिसमें प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल रहता है। और धोनी जो है, उसका क्या है कि उन्होंने जीते हुए, उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको मैच जिता सकते हैं, इंडिविजुअल भी एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन। अब देखना है कि विराट कोहली कैसे अपनी टीम को मोल्ड करता है। उसके साथ डिविलियर है, वेस्ट इंडीज का हिट में उन्होंने साइन किया है, वो भी एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है।
ये थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण का पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया। इस स्केड्यूल के मुताबिक ग्रुप राउंड का आखिरी मुकाबला 5 मई को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 8 बजे मुंबई में खेला जाएगा। खेल समाचारों में आज इतना ही।
अब से कुछ ही देर में भारत में बजेंगे सुबह के 7। वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए अपने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। यूरोपीय संघ के नेता ब्रेक्सिट की मौजूदा समय सीमा 29 मार्च से आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। ब्रिटेन के लिए ब्रेक्सिट की सीमा 22 मई तक बढ़ा दी गई है, वसरते ब्रितानी संसद यूरोपीय संघ के लिए विड्रॉल डील को अपनी मंजूरी दे दे। अगर ब्रिटेन की संसद डील को मंजूरी देने में विफल रहती है तो उस स्थिति में ब्रेक्सिट की समय सीमा 12 अप्रैल होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका गोलन पहाड़ियों को इसराइल के इलाके के रूप में मान्यता दे। इराक के मोसुल शहर में टिग्रिस नदी में एक नाव डूबने से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति माइकल टेमर को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। 78 साल के टेमर 2016 से 2018 तक ब्राजील के राष्ट्रपति थे।
बीबीसी समाचार। नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।